सो स्टेजेस ऑफ इग्डाइसिस पे आ जाते हैं कि इग्डाइसिस में जो है वो कैसे स्टेजेस होती हैं। यहाँ पे देखें वो डायग्राम जो है नॉर्मल है वो दिखाई गई है। सबसे ऊपर आपको पता है कि एपिक्यूटिकल है, नीचे आपको पता है कि प्रोक्यूटिकल है जो कि एग्जो क्यूटिकल और एंडो क्यूटिकल से मिलके बनी है, ठीक हो गया। और फिर उसके नीचे आपको पता है कि ये हाइपोडर्मस है, जिसको हमने कहा था कि मोर टेक्निकली जो है वो आप इसको एपिडर्मस कहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और सबसे नीचे आपको पता है एपिडर्मस के नीचे जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। सो सबसे पहले क्या होता है कि जो एपिडर्मल ग्लैंड सेल्स हैं, इस एपिडर्मस के जो ग्लैंड सेल्स हैं ये सिक्रीट करेंगे एंजाइम्स अलोंग विद द फ्लूइड, और उसको हम कहते हैं मोल्टिंग जेल, यानी कि वो जो फ्लूइड और वो जो एंजाइम्स हैं उनको टोटली हम कह देते हैं मोल्टिंग जेल। तो यहाँ पे देखें कि ये एपिडर्मस के सेल्स ने ऐसे करके सिक्रीट करना है जब मोल्टिंग जेल, तो मोल्टिंग जेल की सिक्रीशन से क्या होगा, यहाँ पे इस डायग्राम में देखें कि ये उसी तरह एपिक्यूटिकल, नीचे जो है ये एक्सो, उससे नीचे जो है ये एंडो, और ये दोनों मिलके आपको पता है प्रोक्यूटिकल बनाती हैं। और यहाँ पे देखें जब एपिडर्मल सेल्स ने जो है मोल्टिंग जेल सिक्रीट की, तो ये मोल्टिंग जेल यहाँ पे ऐसे जमा होना स्टार्ट हो जाएगी जो कि प्रोक्यूटिकल को जुदा कर देगी फ्रॉम द एपिडर्मस, प्रोक्यूटिकल को एपिडर्मस से जुदा कर देगी, या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि ये जो एंडोक्यूटिकल है इसको जुदा कर देगी एपिडर्मस से, क्योंकि प्रोक्यूटिकल का जो नीचे वाला हिस्सा है वो एंडोक्यूटिकल है ना, तो एंडोक्यूटिकल को जो है वो जुदा कर देगी इस एपिडर्मस से ये वाली मोल्टिंग जेल। सो दिस मोल्टिंग जेल डाइजेस्ट द ओल्ड एंडोक्यूटिकल, एक तो ये उसको जुदा करेगी, दूसरे नंबर पे ये इस ओल्ड एंडोक्यूटिकल को जो है वो डाइजेस्ट भी करना स्टार्ट कर देंगे एंजाइम्स जो कि इस मोल्टिंग जेल में होंगे। दिस डाइजेशन सेपरेट्स द एपिडर्मस फ्रॉम द ओल्ड एंडोक्यूटिकल, देन द एपिडर्मस बिगिन सिक्रेटिंग अ न्यू एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। फिर क्या होगा कि ये जो एपिडर्मस है, ये देखें इस एपिडर्मस ने अब रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है न्यू एपिडर्मस और न्यू प्रोक्यूटिकल, ठीक है। आपको पता है कि ये न्यू एपिडर्मस होती है ऊपर वाली, और जो नीचे वाली प्रोक्यूटिकल होगी न्यू, वो फिर मजीद दो चीजों पर मुश्तमिल होगी, एग्जो पर और एंडो पर। तो ये नई सिक्रीट होना जो है वो स्टार्ट हो गई है ये वाली यहां पर, ठीक हो गया। और आपको पता है कि ये ऊपर जो है ये मोल्टिंग जेल है। उसके बाद क्या होगा, द ओल्ड एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल स्प्लिट्स एंड डाइजेस्टेड एंड पोर्स आर फॉर्म्ड। आप देखें मोल्टिंग जेल के ऊपर आपको ये ओल्ड वाली एपिक्यूटिकल और ओल्ड वाली जो है एग्जोक्यूटिकल और ओल्ड वाली जो है एंडोक्यूटिकल, जिनको मिला के हम प्रोक्यूटिकल कहते हैं, ये नजर आ रही होंगी, इनमें क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ये टूटना स्टार्ट हो जाती हैं, इनमें पोर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। सो इससे क्या होता है कि एक तो इनका वजूद खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, दूसरे नंबर पर इनके टूटने से जो कॉन्टेंट्स पैदा होते हैं वो नीचे जो एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल न्यू बन रही है उसको भी उसकी तैयारी में यूज हो सकते हैं। सो द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द न्यू एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल, देन इट इज फाइनली रिमूव्ड। फिर क्या होता है कि ये ऊपर वाली सारी चीज जो है इसमें क्रैक्स वगैरह और तोड़ फोड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, और ये देखें कि ऊपर से फिर जो है ये इस तरह टूटकर उतर जाती है, शेड हो जाती है एपिक्यूटिकल प्लस प्रोक्यूटिकल। और नीचे देखें कि नीचे नई वाली एपिक्यूटिकल और नई वाली जो है वो प्रोक्यूटिकल बन चुकी है, और नई वाली जो प्रोक्यूटिकल है वो आपको पता है फिर एग्जो और एंडो में जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, और इस तरह से जो इंसेक्ट है देखें उसने अपने एग्जोस्केलेटन को जो है वो रीन्यू कर लिया है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इग्डाइसिस, और ये जो सारा प्रोसेस है ना ये इसलिए होता है कि इंसेक्ट जो है वो इस प्रोसेस के बगैर ग्रो नहीं कर सकता। आफ्टर इग्डाइसिस द न्यू एग्जोस्केलेटन हार्डन्स बाय द कैल्शियम कार्बोनेट डेपोजिशन, ठीक हो गया, या फिर स्क्लेरोटाइजेशन, वो पर हमने पढ़ा था कि जो काइटन है वो स्क्लेरोटाइजेशन यानी कि टैनिंग के प्रोसेस से भी गुजरती है, जिसमें काइटन प्रोटीन मैट्रिक्स में मजीद प्रोटीन्स आके क्रॉस लिंक करती हैं और उसकी टैनिंग होती है। और फिर आपने ये भी पढ़ा था कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम की डेपोजिशन भी जो है वो होती है वहाँ पे। तो इससे क्या होता है कि जो प्रोक्यूटिकल में मौजूद एग्जो और एंडोक्यूटिकल हैं वो मजीद स्ट्रेंथन हो जाते हैं, क्योंकि काइटन तो इन्हीं दोनों के अंदर है ना, एपिक्यूटिकल में तो काइटन होती नहीं है। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने एक और बात भी याद रखनी है कि जो स्क्लेरोटाइजेशन का प्रोसेस है और वो जो कैल्शियम कार्बोनेट का और कैल्शियम का डिपॉजिट होने का प्रोसेस है, ये दो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। ऐसे नहीं है कि आप कह दें कि स्क्लेरोटाइजेशन इज द डिपॉजिशन ऑफ कैल्शियम और कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसा नहीं है। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। दीज आर टू डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस, ऑल्दो बोथ कंट्रीब्यूट टू द हार्डनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एक्सोस्केलेटन, बट दे आर डिफरेंट प्रोसेसेस। उसके बाद जी, द आर्थ्रोपोड्स बिकम वल्नरेबल टू द अटैक ऑफ प्रेडेटर्स ड्यूरिंग इक्टाइसिस। इक्टाइसिस के दौरान जो है आर्थ्रोपोड्स ये वल्नरेबल होते हैं कि इन पर कोई दूसरा इंसेक्ट अटैक ना कर दे, क्योंकि ये एक प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। इनके जो एक्सोस्केलेटन है वो टूट रहे होते हैं, नीचे नए वाले एक्सोस्केलेटन बन रहे होते हैं जो कि अभी कमजोर होते हैं, हार्ड नहीं हुए होते, तो इनको जो है उस वक्त छुप के रहना पड़ता है। दे रिमेन हिडन एट दैट पीरियड। All these changes are controlled by the nervous system and hormone called ecdysone. ये सारी changes जो हैं ये एक hormone के अंदर होती हैं जिसको ecdysone कहते हैं। यानी कि यहाँ first stage में जब आपने देखा था ना कि जो epidermis है उसने molting gel secrete करना start की थी, तो epidermis को जो message मिलता है वो nervous system से मिलता है और इस epidermis के cells पर जो hormone act करता है वो ecdysone होता है, ताकि जो है ये molting gel जो है वो secrete करें।